आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच बहस की संभावना। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग वार्षिक पास का शुल्क 3000 से बढ़ाकर 3075 रुपए किया। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। देवघर में आज से 3 दिवसीय राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव का होगा शुभारंभ। कला संस्कृति और भक्ति का होगा संगम। स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय कलाकार देंगे प्रस्तुति। राज्य के कई जिलों में आज ओलावृष्टि और आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। कल से 3 दिनों तक के आंधी बारिश का येलो अलर्ट। और बंगलुरु में आयोजित 5वें इंडियन ओपन जंप अंडर 20 एथलेटिक्स प्रतियोगिता की ऊंची कूद स्पर्धा में अफरोज अहमद ने जीता कांस्य पदक। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही हंगामेदार रहने की संभावना है। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल उठाए जाएंगे, जबकि शून्यकाल में विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं सदन में रखेंगे। सत्र के दौरान सरकार की योजनाओं, कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और विभागीय मामलों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होने की भी संभावना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग वार्षिक पास के शुल्क में संशोधन की घोषणा की है। नई दर के अनुसार शुल्क 3000 रुपए से बढ़ाकर 3075 रुपए कर दिया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह शुल्क वैध फास्टैग वाले गैर व्यावसायिक वाहनों पर राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे के लगभग 1150 टोल प्लाजा पर लागू होगा। वार्षिक पास 1 वर्ष या 200 टोल पार करने तक मान्य रहेगा और इसका भुगतान राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप या प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकेगा। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आज एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस वहां के लिए और वहां से 48 उड़ानों का परिचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
एयर इंडिया ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि दिल्ली और मुंबई से वापसी की उड़ानें परिचालित होंगी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु, कोझिकोड और मैंगलोर से एक एक उड़ान चलाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस मस्कट के लिए और मस्कट से 12 उड़ानें परिचालित करेगा। इसके अलावा दिल्ली, कन्नूर, मुंबई और तिरुवनंतपुरम से एक एक उड़ान और कोची से 2 उड़ानों का परिचालन होगा। स्पाइस जेट कंपनी भी संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा से भारत के लिए और दुबई से पुणे के लिए विशेष उड़ानें चला रही है। ईरान और इराक का वायु क्षेत्र प्रतिबंधित होने के कारण इन सभी उड़ानों के लिए वैकल्पिक लंबे मार्ग का इस्तेमाल होगा। विमान कंपनियों ने यात्रियों को हवाई अड्डा पहुंचने से पहले उड़ान स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी है। वहीं कतर एयरवेज भी अगले 2 दिनों में भारत के लिए 3 और उड़ानें संचालित करेगा। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ये उड़ानें कतर से नई दिल्ली, मुंबई और कोची के लिए होंगी। कतर एयरवेज से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्री एयरलाइन की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन या अपने ट्रेवल एजेंट से संपर्क करके टिकट बुक कर सकते हैं और नवीनतम उड़ान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
बाबा नगरी देवघर में आज से 3 दिवसीय राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन शुरू होगा। यह सांस्कृतिक महोत्सव आज से 18 मार्च तक केकेएन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद लगातार 3 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।
बाबा नगरी देवघर में कला, संस्कृति और भक्ति का संगम बनने जा रहा है। आज से 3 दिवसीय राजकीय वैद्यनाथ धाम महोत्सव की शुरुआत होगी। यह महोत्सव मुख्य उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है तथा पारंपरिक लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसकी तैयारी को लेकर पूरा जिला प्रशासन लग गया है। 18 तारीख को इसका समापन किया जाएगा। देवघर की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाने की दिशा में यह एक बड़ी पहल है। आशीष कुमार अंबस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
गुमला जिले में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नव साक्षरों की आकलन परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम खां के नेतृत्व में जिले के सभी 12 प्रखंडों के 100 संकुलों में हुई। इधर चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत गंगपुर स्थित संकुल संसाधन केंद्र उत्क्रमित मध्य विद्यालय में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की गयी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड की पहचान उसके समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से होती है। इन्हीं परंपराओं में से एक प्रमुख पर्व है सरहुल, जिसे प्रकृति पूजा का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस वर्ष भी यह पर्व 21 मार्च को मनाया जाएगा। राजधानी रांची में भी इसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिक्षाविद बंदे उराव ने बताया कि सरहुल पर्व में धरती और सूर्य की प्रतीकात्मक शादी कराई जाती है। उराव जनजाति के लोग इस दिन को नए साल की शुरुआत के रूप में भी मनाते हैं।
सरहुल झारखंड राज्य के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व कहा जा सकता है, जो यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों के द्वारा मनाया जाता है। सरहुल के दिन जो घड़ा का जो पानी रखा जाता है, उसमें मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है। इस बार जो वर्षा होगी किस प्रकार से होगी, हल्का होगी, भारी होगी, जोर से आएगा, पहान के द्वारा देखा जाता है।
रांची में उपायुक्त सह जिला दंड अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर केंद्रीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने तथा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने पर चर्चा हुई। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने कहा कि पर्व के दौरान व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंचकर एक छात्रा की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया।
चमोली जो 19 साल की लड़की वो कस्तूरबा में पढ़ती थी, अचानक तबीयत बिगड़ गया उनका और हॉस्पिटल लाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। पहली बात मैं जांच करा रहा हूँ, टीम गठित किया है, इसमें हमारे जिला प्रशासन के लोग भी रहेंगे और गांव के लोग भी रहेंगे, परिवार के लोग भी रहेंगे। पोस्टमार्टम के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि सच्चाई क्या है।
राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में आज से 19 मार्च तक गर्जन, तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आज राज्य के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पांचवीं इंडियन ओपन जंप अंडर 20 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ऊंची कूद स्पर्धा में अफरोज अहमद ने कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से बंगलुरु स्थित अंजू बॉबी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आयोजित हुई। इस उपलब्धि पर खेल मंत्री सुदेव कुमार सोनू सहित झारखंड एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारियों ने अफरोज अहमद को बधाई दी। रांची में 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का ट्रायल आयोजित किया गया। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग के ट्रायल में सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची और जमशेदपुर सहित विभिन्न जिलों से करीब 180 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ट्रायल के बाद महिला वर्ग से 30 और पुरुष वर्ग से 32 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिनके लिए 18 मार्च से विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के तारीखों के ऐलान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर और हिंदुस्तान ने लिखा है 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद। दैनिक भास्कर की सुर्खी है सबसे तेज चुनाव, वोटिंग 21 दिन में ही पूरी होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है एलपीजी आपूर्ति में जल्द सुधार के संकेत, बुकिंग घटने से लोगों में घबराहट भी कम। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच बहस की संभावना। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग वार्षिक पास का शुल्क 3000 से बढ़ाकर 3075 रुपए किया। 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। देवघर में आज से 3 दिवसीय राजकीय बैद्यनाथ महोत्सव का होगा शुभारंभ। कला, संस्कृति और भक्ति का होगा संगम। स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय कलाकार देंगे प्रस्तुति। राज्य के कई जिलों में आज ओलावृष्टि और आंधी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। कल से तीन दिनों तक के आंधी बारिश का येलो अलर्ट। और बंगलुरु में आयोजित पांचवें इंडियन ओपन जंप अंडर 20 एथलेटिक्स प्रतियोगिता की ऊंची कूद स्पर्धा में अफरोज अहमद ने जीता कांस्य पदक। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दी बधाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।